أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری بحث جو ہے وہ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کی کتاب حجاب میں چل رہی ہے. پچھلے درس میں مختصر طور پر ان اسباب کی طرف اشارہ کیا کہ جو بعض مفکرین نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ حجاب کیسے وجود میں آیا ہے. شہید مطہری رحمت اللہ علیہ اس درس سے ایک ایک سبب کے اوپر تفصیل سے گفتگو فرماتے ہیں اور ان کو رد کرتے ہیں. پہلا سبب جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریاضت اور ترک دنیا، جس کو رہبانیت بھی کہا گیا ہے، یہ سبب بنی ہے حجاب کے وجود آنے میں. کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، ریاضت کا مطلب یہ ہے، رہبانیت کا، کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے، مادی لذتوں سے کنارہ کشی کی جائے. تو لہٰذا عورت جو ہے یہ لذت کا سبب ہے، خوشی کا سبب ہے. تو جو ریاضت کرتے ہیں، جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں، جو ترک دنیا کرتے ہیں، انہوں نے پھر عورت کو، چونکہ یہ خوشی کا مظہر ہے، چونکہ لذت کا مظہر ہے، اس سے دوری کا فیصلہ کیا. تو لہٰذا یہاں سے عورت کو کنارہ کش کیا گیا، اس کو گوشہ نشین کیا گیا اور وہ پردے میں چلی گئی، اور یہاں سے جو ہے وہ حجاب اور پردہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. ریاضت کو اگر دیکھا جائے، ترک دنیا کو اگر مال کے اندر ترک دنیا کی جائے، ظاہر سی بات ہے پھر وہاں پر فقر کی زندگی گزارنا مد نظر ہوتا ہے. اور عورت کے اندر جو ترک دنیا کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ شادی کے مفہوم کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا جائے. تو لہٰذا آپ دیکھیں، مسیحیت کے اندر یہ فکر جو ہے وہ رائج رہی ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے تھے، ان کے جو رہبانیت کے اندر جو مبتلا ہو جاتے تھے یا ریاضت کے اندر چلے جاتے تھے، یا دوسرے بھی ادیان کے اندر جو چاہتے تھے کہ ریاضت کریں، ترک دنیا کریں اور ایک معنوی کمالات تک پہنچیں، تو وہ پھر کیا کرتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے، عورت سے دور رہتے تھے. تو بہرحال یہ ایک کنسیپٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یہاں پر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ سکھوں کے اندر اور ہندوؤں کے اندر جو ایک رائج چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بال کو لمبا رکھتے ہیں، اس کو کٹواتے نہیں ہیں، اس کا ایک فلسفہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بالوں کو کٹوا دیا جائے تو انسان کے اندر ایک جنسی رغبت، لذت جو جنسی ہے، اس کی رغبت بڑھتی ہے. لہٰذا اس جنسی لذت کی رغبت کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بالوں کو نہ کٹوایا جائے اور بال جو ہیں وہ بڑے رہیں. پھر اس کے بعد رسل کی ایک عبارت کو نقل کرتے ہیں. رسل نے اپنی کتاب میرج اینڈ مورلز کے اندر ایک مطلب کو بیان کیا ہے، وہ یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں مسیحیت کے حوالے سے، کہ رسل کہتا ہے کہ مسیحیت نے قرن اول ہی کے اندر جو ہے پولس مقدس کی یہ ایک فکر تھی، اس کو جو ہے وہ کافی پھیلایا اور اس کو قبول کیا، اور وہ تھا کنوارپن رہنا، اس کنوارپن کو مقدس قرار دیا، اور اس کی وجہ سے پھر بہت سارے افراد جو ہیں وہ بیابانوں میں چلے گئے، صحراؤں کے اندر چلے گئے، تاکہ وہ اپنے شیطان کو جو ہے وہ سرکوب کر سکیں، جو شیطان ان کے ذہن کے اندر موجود ہے اور شہوانی تخیلات ان کے اندر لے کر آتا ہے، اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں. اسی طرح رسل لکھتا ہے کہ کلیسا نے جو ہے وہ نہانے سے بھی جو ہے منع کیا اور اس کے ساتھ مبارزہ کیا، چونکہ انسان کا جو بدن ہے، اس کے جو انسان کا جو بدن جو خطوط ہیں، بدن کی جو باڈی، آپ یوں کہہ لیں کہ لینگویج، باڈی لینگویج جس کو کہتے ہیں، یہ جو چیز ہے یہ انسان کو گناہ کی طرف جو ہے وہ لے کر آتی ہے. تو لہٰذا اس کو گندگی کے اندر رکھنے کو جو ہے وہ تحسین شمار کیا گیا، اور نظافت جو ہے اس سے منع کیا گیا، تاکہ مکمل طور پہ آپ گندگی کے اندر رہیں گے تو رغبت نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی، دنیا کی طرف تمایل، رجحان جو ہے وہ نہیں بڑھے گا، تو ریاضت صحیح طریقے سے ہو سکے گی اور معنوی کمالات جو ہیں وہ حاصل کر لیں گے. یہ رسل کی عبارت جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. اب یہاں پر شہید فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر فطری طور پر انسان کو دیکھا جائے تو یہ بات کلیئر ہے، واضح اور روشن ہے کہ انسان جو ہے وہ لذت طلب ہے، انسان لذت کے پیچھے ہے. اب وہ چاہے لذت مادی ہو، لذت معنوی ہو، جو بھی ہو، لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، خوشی کے پیچھے ہے، خوشی کے اندر رہنا چاہتا ہے. تو کیا ہوا کہ اس فطرتی جو ایک رجحان اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس سے اس نے منہ پھیر لیا اور رہبانیت اور ریاضت کی طرف جو ہے اس نے منہ کیا اور اس کو اختیار کیا ہے. تو مختلف اسباب जो तारीख के अंदर नकल किए हैं शेर मुतारी रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पर उसका तज़करा करते हैं। एक जो सबब यहाँ पर बयान किया है वो ये है कि बाज़ों का ये अकीदा था कि हकीकत तक अगर पहुँचना है तो ये हकीकत तक पहुँचना मादी लज्जतों के हमरा नहीं हो सकता है, आपको हतमन जो है इनसे दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी, तब जाकर आप हकीकत तक पहुँच पाएंगे। तो लिहाजा औरत को देखें वो भी मादी लज्जत का मज़हर है, माल को देखें वो भी मादी लज्जत का मज़हर है, बाकी भी जो असबाब हैं दुनियावी जो हैं वो इंसान को मादियत की तरफ मुतवज्जे करते हैं, मानवियत से और हकीकत तक पहुंचने से इंसान जो है वो रुक जाता है। तो लिहाजा बाज़ मुफक्किरीन ने इसको इल्लत असली करार दिया है रियाजत और रहबानियत का। एक और मतलब और सबब जो रियाजत का ज़िक्र किया है वो ये है कि बाज़ों ने यह कहा है कि इंसान ने देखा कि अगर इसके पास मादी वसाइल आ जाएं, मादी नेमत आ जाएं, तो ठीक है वो उन नेमतों के अंदर जो है वो खुशी उसको महसूस करता है, राहत उसकी ज़िंदगी में राहती आ जाती है, आसानी व आसाइशी आ जाती है उसके अंदर, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी सख्तियाँ आ जाती हैं। मसलन अगर वो माल जो है वो अपने पास रखता है तो अब फिर उसको माल को संभालने के अंदर जो सख्तियाँ हैं वो सख्तियाँ फिर उसको जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उसकी हिफाजत के लिए उसको बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। आज़ादी जो इंसान की होती है वो सल्ब हो जाती है इन मादी नेमात की वजह से। जाहिर सी बात है जब आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप ना सही तरीके से खुल के बाहर जा सकते हैं, ना आप अपने पैसे को किसी ऐसे ही जगह के ऊपर आसानी के साथ जो है वो निकल के चले जाएं, बल्कि तमाम कीमती चीज़ों का, पैसा तो मैं वैसे नाम ले रहा हूँ, उसके अलावा भी जितनी कीमती अशिया हैं उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं इसको महफूज करने के लिए। तो इंसान की फ़िक्र जो है वो मशगूल रहती है, इंसान फिक्री तौर पर आज़ाद नहीं रहता, इंसान अपनी बदनी और दूसरे एतबार से भी आज़ाद नहीं रह सकता, हर जगह नहीं जा सकता, खुलकर नहीं फिर सकता और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये जो सख्तियाँ आ जाती हैं इंसान की उस आज़ादी को महदूद कर देती हैं। तो लिहाजा एक सबब यह बना कि मादी लज्जतों से दूर रखा जाए अपने आप को, ताकि इंसान जो है वो इन मुश्किलात के अंदर जो है वो मुब्तला ना हो। तो यहाँ फिर जाहिर सी बात है कि कंवारापन जो है उसके अंदर भी वो अपने आज़ादी शुमार करते हैं और उन्होंने शादी की जो ज़िम्मेदारी है उससे जो है वो इनकार कर दिया और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। तो लिहाजा ये दो सबब अहम जो हैं वो ज़िक्र किए कि लोगों ने रियाजत और रहबानियत और तर्क दुनिया की तरफ क्यों रुजू किया है। तो शहीद फरमाते हैं कि अगर देखा जाए तो हिंदुओं के अंदर जो एक रियाजत का कंसेप्ट पाया जाता है, अगर उसके सबब को देखा जाए तो पहला आमिल जो है वो लगता है कि ये मुझे बना के हिंदू मज़हब जो है वो इसकी तरफ आया, रियाजत की तरफ। यूनान के अंदर एक ग्रोह वजूद में आया कि जिसने इसी रियाजत को अपनाया और उसके अंदर फ़क्र की ज़िंदगी को तरवीज किया, उसको तहसीन किया। उस ग्रोह का नाम था कल्बियून, कल्बी से निकला है। कल्बी एक शख्स का नाम है कि जो कि सुकरात का जो है वो शागिर्द रहा है और ये रियाजत की तरफ आया और इसने एक सिलसिला कायम किया, इसके पैरोकार बने काफ़ी सारे और इसने रियाजत की फ़िक्र को तरवीज किया, माल दुनिया की नफ़ी की है, फ़क्र की ज़िंदगी को इख्तियार करने को तरजीह दी है। और शहीद फरमाते हैं कि इस गिरोह के अंदर जो है दूसरा आमिल जो है वो मुअस्सिर लगता है कि दूसरे आमिल की वजह से इन्होंने जो है वो रियाजत की फिक्र को जो है वो इख्तियार किया है। एक और आमिल जिसकी तरफ इशारा करते हैं जनाब शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह के बशर क्यों रियाजत की तरफ और रूहानियत की तरफ आया है, फरमाते हैं कि एक सबब यह है कि इंसान जब मादी लज्जतों से महरूम हो जाता है, नाकाम हो जाता है, शिकस्त खा जाता है, उन तक नहीं पहुंच पाता, तो फिर इंसान क्या करता है उसका मुखालिफ हो जाता है, उसको तर्क कर देता है और रियाजत और रूहानियत की तरफ आ जाता है। फरमाते हैं कि ये मामूलन इश्क के मसले में जो है वो मौरद ज़्यादा उभर के सामने आता है कि इंसान को एक चीज़ से इश्क हो जाता है और फिर उस तक नहीं पहुँच पाता है और फिर उससे नफरत करने लगता है और फिर उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेता है। एक और सबब जो यहाँ पर बयान करते हैं वो थकावट है, यानी इतना मादी दुनिया के अंदर इंसान गिर जाता है, इतना इस्तिफादा करता है, तो अब इस्तेफादा कर कर के मादी दुनिया के अंदर रह रह कर अब इंसान जो है वो थक चुका है इस मादी लज्जात से, इस मादी वसाइल से। तो अब इंसान अपनी इस खस्तगी और जो है थकावट की वजह से फिर क्या करता है, मादी लज्जतों को छोड़ देता है और रहबानियत और रियाजत की तरफ जो है वो आ जाता है। तो शरीफ फरमाते हैं ये जो दो सबब हैं, एक थकावट का और एक जो है शिकस्त का, ये जो दो सबब हैं इसकी तासीर का इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसान की ज़िंदगी में इसकी कोई तासीर नहीं होती ना। तासीर ज़रूर होती है कि जो इंसान शिकस्त खा जाए उससे नफ़रत ज़रूर करता है या उससे दूर हो जाता है या इंसान जो है वो थकावट हो जाती है, यानी इस्तेमाल कर करके अब लज़्ज़त नहीं आ रही है, अब थक चुका है उससे, तो इंसान की ज़िंदगी में तासीर है उसकी। लेकिन हम इसको इल्लत मुनहसर करार नहीं दे सकते, यानी हम कहें कि रियाजत इस वजह से वजूद में आई है चूँकि वो शिकस्त खा गया है, रियाजत इसलिए वजूद में आई है चूँकि वो मादी लज्जात से इस्तेफादा कर करके थक चुका है, ना ऐसा नहीं है। सबब है, तासीर है इसकी, लेकिन हम इसको मुनहसिर इल्लत जो है वो शुमार नहीं कर सकते हैं। बस ये एक सबब जो हिजाब का शेख मुतारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि रियाजत और रोहबानियत सबब बनी है कि ख्वातीन के लिए हिजाब को करार दे दिया जाए। अब शेख मुतारी रहमतुल्लाह अलैह इस फिक्र को जो है वो रद्द करते हैं, फरमाते हैं कि देखना यह है कि आया इस्लाम जो हिजाब का हुक्म देता है, ताकीद करता है हिजाब के ऊपर, ये इसी रियाजत की वजह से है, रोहबानियत व तरके दुनिया की वजह से, या ना इस्लाम जो है एक अलग फ़लसफ़ा और एक अलग सबब रखता है हिजाब और पर्दे के लिए। तो यहाँ फरमाते हैं कि ये तो बात हम तफसील से बाद में करेंगे कि असल सबब और फ़लसफ़ा हिजाब क्या है, लेकिन अभी इस सबब के ऊपर अपनी तनकीदी निगाह जो है वो पेश करते हैं कि इस्लाम जो है वो मसीहियत और यहूदियत और बाकी भी अदियान जैसे हिंदुइज़्म के अंदर है, सिखिज़्म के अंदर है, इस तरीके से जो है वो नहीं देखता दुनियावी लज्जात को और मादी लज्जात को, बल्कि इस्लाम जो है उसने तो बाकायदा तौर पर जो है मादी लज्जात की तरफ तवज्जो रखने की तरगीब दिलाई है, चूँकि ये मखलूक खुदा है और मखलूक खुदा जब है तो इससे मना खुदा जो है वो नहीं कर सकता है। इसको थोड़ी तफसील की ज़रूरत है चूँकि वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह इसको अगले दर्स में थोड़ी वजाहत से बयान करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।